Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you and any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. And of course, do prefix the code 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi. My name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
नमस्कार. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र एक बार फिर हाजिर है. आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह हम आपके प्रश्नों को भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे. फिर वो व्यापार जगत हो, अर्थव्यवस्था हो या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल हो, आप उसे पूछने के लिए हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं. ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं और जो मोबाइल फोन से हमें कॉल करने वाले हैं, वो इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आज खबरों पर चर्चा करने के लिए और आप जो सवाल हमसे पूछेंगे आज इस कार्यक्रम में, उसके जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर, मार्केट मंत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन.
बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.
चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने हेडलाइंस.
Benchmark domestic indices end with gains. Sensex climbs nearly 500 points. Nifty closes above 25,700 level. Global crude oil prices rise marginally. And in the bullion market, gold and silver prices rise.
देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में तेजी. सेंसेक्स लगभग 500 अंक बढ़ा, वहीं निफ्टी 25,700 अंक के ऊपर बंद हुआ. वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली रूप से बढ़त देखी गई और सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई.
Before we proceed, here is an advisory. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
Nishit, seedhe Delhi se hamare saath Amit jud rahe hain. Amit ji, karyakram mein aapka hardik abhinandan. Apna pehla sawal poochiye.
Sabhi ko. सिन्हा सर से मेरा सवाल ये है सर कि जो अभी आज आरबीआई ने कुछ रेगुलेशन है, कुछ बताया है ब्रोकर के लिए, कुछ ऐसा ब्रोकरिंग हाउस कंपनी के लिए, एक ये. और दूसरा ये सर, ईरान और जो अमेरिका का अभी जो चल रहा है सर, तनाव चल रहा है, क्या ये 26 फरवरी को जनेवा में मीटिंग होनी है, तो क्या लग रहा है 26 फरवरी को कुछ नतीजा इसका निकलेगा? धन्यवाद.
देखिए, पहला जो आपने प्रश्न पूछा है, आरबीआई की बोर्ड बैठक के बाद जो संवाददाताओं से बातचीत आरबीआई गवर्नर और वित्त मंत्री कर रहे थे, उसमें एक प्रश्न आया था कि जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए जो फाइनेंसिंग की जाती है और उसके लिए जो नई शर्तें दी गई हैं, क्या उसमें किसी भी तरह का बदलाव हो रहा है. और ये बदलाव की मांग इसीलिए उठी क्योंकि जब इन शर्तों का ऐलान किया गया था तो कई जो ब्रोकिंग फर्म्स हैं उनके शेयरों में काफी गिरावट देखने को मिली. तो ये पूछा गया कि क्या उसमें कोई रियायत देने की बात है, तो आरबीआई गवर्नर ने साफ कर दिया कि उसमें किसी भी तरह की रियायत मिलने की उम्मीद नहीं है. दूसरा जो आपका प्रश्न है, ईरान और अमेरिका वाला, देखिए उसको लेकर के मिश्रित हमारे पास संकेत हैं. और आज अगर उसे आप शेयर बाजार में देखें, शेयर बाजार से जोड़ करके देखें, तो और आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि एक तरफ जो व्यापार समझौता है अमेरिका का, उसको लेकर के जो परिस्थिति बनी है सुप्रीम कोर्ट के जो वहां के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, उसके असर को कुछ हद तक इस ईरान और अमेरिका के बीच के संकट को ने जो है वो कम कर दिया. अब 26 फरवरी को जो बैठक होनी है जिनेवा में, उम्मीदें तो बहुत ज्यादा है लेकिन दोनों ही पक्ष अभी अपने अपने रुख पर कायम है, इसीलिए अभी फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है. उम्मीद कर सकते हैं कि शायद वहां से कुछ हमें एक शांति का रास्ता निकले.
बिल्कुल, आइए जाने हमारे शेयर बाजारों का हाल। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज आधे प्रतिशत से अधिक बढ़े। सेंसेक्स 480 अंक बढ़कर 83,295 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 142 अंक बढ़कर 25,713 पर स्थिर रहा। वैश्विक बाजारों में गर्मजोशी हमें तब देखने को मिली जब अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को देर रात अमरीका द्वारा लगाए सभी देशों पर टैरिफ को रद्द करने का फैसला दिया। इसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा। परिणामस्वरूप सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच शेयर सूचकांकों ने आज सप्ताह की शुरूआत मजबूत बढ़त के साथ की।
The benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, rose over 0.5% today. The Sensex climbed 480 points, close at 83,295, while the Nifty advanced 142 points to settle at 25,713. Meanwhile, the markets opened the week with strong gains early today amid positive global cues and investors' sentiment buoyed by the U.S. Supreme Court decision that struck down President Donald Trump's tariffs.
सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई। शीर्ष प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में अदानी पोर्ट्स लगभग 3%, कोटक बैंक 2.2% से अधिक और अल्ट्राटेक सीमेंट में 1.5% से अधिक की वृद्धि हुई। शीर्ष पिछड़ने वाली कंपनियों में इन्फोसिस 1.8%, टेक महिंद्रा लगभग 1.1% और ट्रेंट में 0.8% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।
एंड अमंग द सेक्टोरल इंडिसेस एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 16 आउट ऑफ 24 सेक्टर्स लॉग्ड गेन्स। पीएसयू बैंक जंप्ड 1.4%, सर्विसेज rose almost 1% and hospitals climbed 0.9%. Conversely, focused IT declined over 1.5%, IT dropped about 1.4% and private bank index dipped over 0.2%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,435 companies declined, 1,894 advanced and 168 remained अनचेंज्ड।
आइए जाने क्या रहा रुपए का हाल। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे मजबूत होकर 90.88 रुपए पर बंद हुआ। दुनिया की अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक 97.68 पर चल रहा था।
शिशिर, इफ यू लुक एट द मार्केट्स टुडे, ऑफ कोर्स एज यू मेंशनड इन योर ओपनिंग रिमार्क्स टू एन to a credit or one of our listeners, that what would market turn to post 26th is the date when US and Iran meet in Geneva. But today, of course, was the effect of the US Supreme Court overturning the Trump tariffs, which was imposed earlier. Now, we see, you also mentioned in your opening remarks that the markets did buoy a bit today. But later on, if we look at it, and mostly over the sectoral, over the sectors, if we see it, plateaued quite a bit in the afternoon trade. So do you see a kind of fatigue kind of setting in the markets now?
See, after the Supreme Court decision, when it was said that the 10% duty will be imposed, and then within, say, few hours, it was said now it will be 15% for 150 yes. days. So there is a lot of confusion in the market that what kind of rate we are going to have and what will be the meaning of trade deal.
And even if this 15% would stand, that is another thing, 10%, 15%, 18%, it has been going on for quite a while now.
It's just like a stock ticker that today, at 10-15 you are saying that the stock prices has gone up like this thing, 10-20 you are saying that stock prices has gone up like that thing. So that is a problem, that market is not getting a clear signal that what is going to happen. The second big question is about the trade deals, and if you remember that Indian delegation which was supposed to visit to finalize the interim trade deal, that tour has been postponed and there is no fresh date. So considering all those things, the market is in a bit confused mood. What should it do? At the same time, when you have the US and Iran thing, and there are certain news reports that there is assembly of soldiers in one of the Middle East countries.
Yes.
So that is also creating some kind of fear in the market, that will America attack on Iran, and then what will be the situation? Because at this moment, any kind of war or any kind of this kind of arm strike, that is going to have a wider impact. Today you cannot say that it is just a war or just a struggle or just a fight between two countries. It is involving more and more countries. So that is why you have seen that the market is just 500 point up if I go by the Sensex. And also the sectoral thing, you mentioned about the focused IT and the IT and 1.5% and 1%. In fact, IT stocks during the last 30 days, I mean, if you calculate the loss, the notional loss of shareholder, it is more than $50 billion. That's humongous.
मैं यहीं पर शिशिर मैं यहीं आपसे जानने की कोशिश भी कर रही हूं कि ऐसे तो जो बाजार की प्रवृत्ति होती है वो कभी उतार चढ़ाव का रहता है हिसाब किताब वो एक अलग बात है लेकिन एक टाइम के बाद अगर यही इस तरीके का जो नकारात्मक माहौल है किसी एक सेक्टर स्पेसिफिक में अगर वो कायम रहे तो ये किस तरीके के संकेत हमें देता है.
देखिए अभी आईटी सेक्टर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती एक तकनीकी दे रही है जिसको हम लोग एआई के नाम से जानते हैं और बीच में अचानक एक खबर आती है कि एक कंपनी ऐसा एआई का टूल लेकर के आ रही है जो कई काम को कर सकती है तो उससे लगता है कि आईटी सेक्टर के लिए काम करने का मौका जो है वो कम हो जाएगा और उसकी वजह से हमें उसमें गिरावट देखने को मिल रही है. तो अभी एक कारण तो ये है कि तकनीक को जो है वो एक तरीके से पीछे धकेल रही है और दूसरी तरफ कुछ देशों में खासतौर पर यूरोप के देशों की हम लोग बात करें वहां पर अभी भी आर्थिक स्थिति बहुत सुधरने की उम्मीद दिख नहीं रही है. अमेरिका की भी जो विकास दर के आंकड़े आए हैं वो उम्मीद से कम है और जब इस तरह के विकास दर के आंकड़े आते हैं या जब इस तरह की सुगबुकाहट होती है कि अर्थव्यवस्था धीमी हो सकती है तो इसका मतलब है कि जो आप वहां की कंपनियां हैं जो कि आईटी के ऊपर खर्च करने वाली हैं उस खर्च में कमी होगी और उसका सीधा सीधा असर आपको आईटी कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिलेगा.
नहीं, इसके साथ ही एक और बात है, मतलब हमारे जो 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 रिटेल जो खुदरा निवेशक हैं और हमारे बहुत सारे श्रोता भी प्रोग्राम को इसी मतलब की एक्सपेक्टेशन से सुनते हैं कि हमें इस तरीके का कोई जवाब मिलेगा. सवाल वो ये लेकर के आते हैं कि हम अगर इस तरीके की सिचुएशन में जहां पर एक दिन सुर्खियों में निश्चित आता है कि ये सेक्टर में उछाल आया है और अगले ही दिन उसमें आता है कि यहां कि वो उछाल देख करके बेचारे जो खुदरा निवेशक है वो उस पर पैसे लगा देते हैं और फिर जब अगले दिन हम देखते हैं तो फिर वो एकदम नकारात्मक दिशा में बढ़ रहा होता है. तो इस तरीके के माहौल को टैकल करने के लिए आपका निवेशकों के लिए क्या संदेश है?
देखिए, बाजार का एक नियम है, बाजार में जब गिरावट हो तो खरीदिए और उछाल हो तो बेचिए. अब दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ उल्टा चलन ज्यादा देखने को मिलता है कि जब बाजार में उछाल आता है तो लोग खरीदने चले जाते हैं. नहीं, आपके पास जो है उसको किस्तों में, जैसे आपके पास अगर 10 है तो उसमें से 5 निकाल करके आप मुनाफा वसूली करिए और मुनाफे की कहते हैं ना कि जैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्टॉप गेन लगाइए कि मुझे इतना करके इतना फायदा यहां पे लेना है फिर अगले चरण में और लेना है. तो क्या हुआ कि मार्केट जब गिरा आपने नई खरीदारी करी और पुराना जो था थोड़ा उसको बेच दिया तो आप कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थिति में होंगे. हम लोग जो ये चलन देखते हैं ना कि अचानक बाजार में तेजी है और सब लोग खरीदने चले जाते हैं, कृपया इस चलन से बचिए.
दैट्स फोमो सुशील जी, दैट्स कॉल्ड फोमो. एंड आवर नेक्स्ट कॉलर इज के शुक्ला फ्रॉम महाराष्ट्र. मिस्टर शुक्ला, वेलकम टू द शो.
ठीक है, धन्यवाद. मेरा प्रश्न ये था कि रियल एस्टेट में आपके ही कार्यक्रम के थ्रू मुझे जानकारी मिली कि रियल इस्टेट से रिलेटेड कोई कुछ 4-5 शेयर है उसको खरीदने से रेंट का कुछ इनकम होता है, ऐसा कुछ जरा विस्तृत में बताइएगा.
देखिए, दो चीजें अगर मैं समझ पा रहा हूं इनके सवाल का, एक जो कि आप विशेष कंपनी विशेष के शेयर में जो आप खरीदारी करते हैं वहां पे मुनाफा और वहां पे घाटे की अलग है. जो इनका प्रश्न मुझे लगता है कि ये रीट से जो जुड़ा हुआ ज्यादा है, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं उससे जुड़ा हुआ सवाल है और रीट में आपके लिए एक अच्छा मौका है खरीदारी करने को. जब भी कभी भी उनका कोई आईपीओ आता है तो वहां पर पैसे आप लगाइए. रीट्स में लोगों को काफी अच्छा मुनाफा हुआ है तो अगर आप उसमें पारंपरिक शेयरों में निवेश करने के बजाय अगर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में आप जाते हैं तो वो आपके लिए एक बेहतर विकल्प दे सकता है.
बिल्कुल. जयपुर से हमारे साथ जितेंद्र जुड़ रहे हैं. जितेंद्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत, अपना सवाल पूछिए.
हेलो
जी, अपना सवाल पूछिए.
हाँ सर, ये बोला था कि अभी जो मार्केट वायलेट रहेगा, मतलब कभी कभी ज्यादा कभी कम, तो हम लोग जैसे अगर मंथली एसआईपी करते हैं इसके अंदर, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो करते रहे ना लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे फर्मा है, आईटी है.
देखिए जितेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा है कि क्या हमें लंबे समय तक बना रहना चाहिए। यही तो शेयर बाजार की सबसे बड़ी जरूरत है। हमारे लिए क्या होता है ना कि हम लोग जब बाजार में जाते हैं हमारा धैर्य बहुत कम होता है और उसका नुकसान हमें कई मौकों पर उठाना पड़ता है। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि शेयर बाजार में केवल पैसा निवेश मत करिए, धैर्य का भी निवेश करिए, आप बेहतर स्थिति में रहेंगे। आपने जिन दो क्षेत्रों की बात की है, अगर एक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, एक तो उनका फार्मा सेक्टर था और दूसरा क्षेत्र मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन फार्मा सेक्टर जिसको कहते हैं कि बहुत ही एक डिफेंसिव स्टॉक होता है और ऑल टाइम चलने वाला है, यानी कि आपको उसमें नुकसान होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि क्या ना कि दवा एक ऐसी चीज है जो आपको हर वक्त जरूरत होती है, तो दवा कंपनियों को घाटे की बात नहीं की जा सकती है। और रहा सवाल कि SIP का, तो बाजार जब नीचे जाता है और बाजार जब ऊंचा जाता है तो उसमें आपको एवरेजिंग करने का मौका मिलता है। आप अगर म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हैं तो उसका फायदा है। और एक बात मैं अभी जो मैंने जो उनके शुक्ला साहब थे उनके प्रश्न के जवाब में मैंने कहा था कि अगर किस्तों में मुनाफा कमा सके तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
श्रोताओं, हमने जाना घरेलू शेयर बाजार का हाल और अब आइए जानते हैं कि एशिया और यूरोप के सूचकांक कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आज अधिकांश एशियाई शेयर सूचकांकों में सकारात्मक रुझान देखने को मिला। हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 2.5% से अधिक बढ़ा, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक 0.6% से अधिक बढ़ा और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स लगभग 0.5% बढ़ा। वहीं बात चीन और जापान के शेयर बाजार की करें तो अवकाश के कारण ये दोनों ही बाजार बंद रहे। प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों में मिला जुला रुख रहा। लंदन का फुटसी 0.1% से अधिक बढ़ा, फ्रांस का कैक 0.1% बढ़ा, जबकि जर्मनी का डैक्स अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.3% घाटे में कारोबार करता हमें नजर आया। शिशिर, अधिकांश जो शेयर बाजार है उनके जो सूचकांक है वो हमें सकारात्मक रुझान के साथ दिखे, तो जो हमें ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं क्या उसका जो डायरेक्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे श्रोताओं, लेकिन उससे पहले दिल्ली से हमारे साथ दिनेश जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, अपना सवाल पूछिए।
गुड इवनिंग मार्केट मास्टर टीम।
गुड इवनिंग।
ऐसे है, वो अभी पीछे डेट आई थी जिनके पास फिजिकल शेयर है वो 6 महीने के अंदर मतलब 6 जनवरी तक कन्वर्ट करवा लें, उसके बाद फिर तो वो डेट एक्सटेंड हुई है या नहीं?
अभी तक तो उसके बारे में कोई सूचना नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कुछ भी है और अभी भी आपने नहीं किया है तो एक बार जरूर कंपनी के जो रजिस्ट्रार हैं, जिस कंपनी का भी आपके पास शेयर है, उनके रजिस्ट्रार से अविलंब संपर्क करें जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो।
राइट शिशिर जी, टॉकिंग ऑफ द एशियन मार्केट्स, हैंगसेंग ऑफ हांगकांग 2.5% इज क्वाइट अ बिट इन अ डे, एंड ऑल्सो द कोरियाज कॉस्पी एंड सिंगापुर स्ट्रेट्स टाइम्स एंड ऑल। So one thing is, of course, that the Asian market was buoyed today, and the European markets were mixed quite a bit. Now my question is that, talking of the FIIs here, you know, the FII has been net kind of, you know, buyers in if we take this February month into consideration. Now juxtaposed with the past 12-18 months of the AII sellout happening in the Indian markets. Now, do you see this FII buying into the Indian markets as a result of the resilience and the stability and the platform that the Indian economy, the Indian market, and the Indian ecosystem provide to them?
See, fundamentally, there is no problem in Indian market. And if you can remember, today Finance Minister said the same thing. Once he was asked that net FDI is going down, so what you have to say? So she said, no, the fundamentals are very strong and people are investing. I mean, that is why the gross FDI is much higher. And if I go by the FPI, which is a fund portfolio investment in various stock market in Asia as well as in Europe, or in various EMs, I would say, emerging economy. See, any institutional investor will see where is the valuation, what is the valuation. And during last few months, we saw that Indian markets were going very high. So there was some kind of concern that whether that valuation is sustainable or not. Now that valuation is really attractive and that is why they are coming. At the same time, when you see this US tariff action, any country where the tariff action is favorable, there the EM, there the foreign investors will go and buy the shares. And wherever there is a, some kind of dilemma or some kind of situation,
confusion,
like
yes.
confusion, like European Union very clearly said that they will stick to the deal, irrespective of what the Supreme Court says or what Mr. Trump is doing. So if this kind of situation is there, you will find that the data which you just mentioned, that all the Asian markets were in the positive territory and the European were having a mixed trend because of this particular region, because the confusion is there that whether we will go with the deal which European nations signed with, or UK signed with UK, USA, or they will wait for further action by this thing. So there is some confusion. But wherever that 10% or 15% appears to be favorable, the investors will go and
buy. In fact, I'll take your word forward, Shishirji. If you look at a few countries in Europe, there are a few countries, I don't want to name them, but there are a few countries who would be net losers, in fact, if the tariff stands at 15% as of now, because the earlier tariff rates were much lower than 15%. So that is another factor, I think.
Certainly. Yes. Because for those countries, wherever you are going to pay more for the goods which are coming from those countries, of course, those countries will be in a bad situation. And that is why you are seeing the mixed trend there.
Right. And we remind our listeners, you can call in our telephone numbers 2331-4444-2342-1050 and 2331-0464 and prefix 011, the STD code of Delhi, before you call these numbers if you're calling from out of Delhi or from your mobile phones. And moving on to the next story, India and France have signed an amending protocol to revise the India-France Double Taxation Avoidance Conventions, DTAC. In a statement, Finance Minister informed that the protocol was signed during the recent visit of French President Emmanuel Macron to India. Now, under the amended provisions, full taxing rights on capital gains arising from the sales of shares will be granted to the country where the company is a resident. The amending protocol also deleted the so-called most favored nation, that is MFN clause, from the protocol to the DTAC, thereby bringing to rest all the issues relating to it. The changes introduced through the amending protocol will enter into effect subsequent to the completion of internal procedures under the laws of both the countries and subject to the terms agreed between the two countries.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार सोने की कीमतों पर कड़ी नजर रखे हुए है. उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान सोने के मूल्य में आमतौर पर वृद्धि होती है और अभी तक ये निर्धारित सीमा पार नहीं कर सकी है. उन्होंने आज ये बात नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल के साथ संवाददाता सम्मेलन में कही. शिशिर, आज जो संवाददाता सम्मेलन भारतीय रिजर्व बैंक के जो केंद्रीय निदेशक मंडल है और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने जो एड्रेस किया है प्रेस ब्रीफिंग में, उसमें और क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहे?
देखिए, ये हर बजट के बाद वित्त मंत्री जो सेबी और आरबीआई जो हमारे रेगुलेटर हैं, उनके बोर्ड को बजट के बारे में बताते हैं कि बजट में क्या कुछ किया गया है, और उसके बाद बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें आरबीआई के गवर्नर और वित्त मंत्री दोनों ही मौजूद रहते हैं. दो तीन मुद्दे काफी महत्वपूर्ण थे, और उसमें एक मुद्दा जिसका आपने जिक्र किया, सोने और चांदी का. और सोने और चांदी को लेकर के एक बड़ी चिंता इसलिए जताई जाती है क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा आयात करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है उससे हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो प्रभावित हो सकता है, उससे हमारे रुपए पे असर पड़ सकता है. और हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस समय सोने और चांदी दोनों ही आसमान पे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहां उसके लिए कीमत, हमको इम्पोर्ट बिल ज्यादा पे करना पड़ेगा. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा मुद्दा था बैंकों की ओर से मिस सेलिंग का. अब अपने श्रोताओं के लिए समझना जरूरी है कि मिस सेलिंग आखिरकार होता क्या है. और हमारे कई श्रोता जब बैंक से कर्ज लेने जाते होंगे घर के लिए, तो बैंक वाले उनसे कहते होंगे कि आपको एक बीमा पॉलिसी भी लेनी है, क्योंकि ये इसके लिए जरूरी हो जाता है. कहीं भी लिखित में या किसी भी नियम के तहत वो बीमा लेना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इस तरीके का दबाव बन जाता है उस ग्राहक के ऊपर जो कि कर्ज लेने गया हुआ है, कि वो एक लेने के लिए तैयार हो जाता है. और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये जो पॉलिसीज होती है ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ये इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है. जब ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब ये है कि अगर किसी वजह से दुर्भाग्यवश जिसने कर्ज लिया है उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका पैसा जो है वो बैंक को जाएगा, ना कि उस परिवार को मिलेगा, और उतना ही पैसा जाएगा जितना उन्होंने कर्ज दे रखा है बैंक को। यानी कि जिस व्यक्ति ने पूरा प्रीमियम अदा किया उसके लिए कोई फायदे की बात नहीं है। अच्छा, आप दूसरी ओर देखिए कि हम में से कई लोग, अगर मान लीजिए कि दो तरह का बीमा पॉलिसी हम ले चुके हैं, अपने लाइफ इंश्योरेंस ले चुकी है, हमने हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखी है, उसके बाद मुझे कहा जाए कि आप एक और इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए और उसकी बारीकियों में छिपा होता है कि ये ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये एक मिससेलिंग है, यानी कि आपके साथ एक गलत व्यापार हो रहा है। वित्त मंत्री ने इस बात के लिए जोर दिया कि बैंकों का काम कर्ज देना और जमा जुटाना है, बीमा पॉलिसी बेचना नहीं है। वो कह रही है कि आप फोकस करिए कि आपका जो मूल काम है, जो मूल धंधा है, बाकी इन धंधा से आप अपने आप को दूर रखिए। और अभी रिजर्व बैंक ने इसके लिए गाइडलाइन का एक ड्राफ्ट, एक मसौदा जारी किया है, उससे उम्मीद की जाती है कि इसमें सेलिंग पर काफी हद तक रोक लग सकेगी।
दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एंड दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट दैट इज पुट अक्रॉस बाय द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द बैंक, बिकॉज जनरली इवन इन आवर प्रोग्राम शिशिर जी, वी हैव एनकाउंटर्ड न्यूमरस सच क्वेश्चंस वेयर इन द बैंक हैज काइंड ऑफ यू नो फोर्स्ड अपॉन यू नो द कस्टमर्स टू बाय सर्टेन प्रोडक्ट्स व्हिच इज नॉट ऑफ देयर यूज,
एंड दैट एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट व्हिच दे आर से बोरोइंग। लाइक फॉर द होम लोन, why somebody has to pay 10,000 or 15,000 rupees as a premium annually? You are already paying an interest rate of 8%, 9%, and another 1% is added because of this thing. And the most important part which I want to highlight it, that the benefit of that insurance policy is not to the individual but to the bank.
Yes.
Absolutely.
That should be avoided. And even if I want to have some kind of protection, I will go and buy an individual policy from any of the companies just to protect my loan.
Yes.
Why you are forcing me? And please remember that banks are not the insurance agent. Their business is to take deposit and give the borrowing. Please focus on that. That is what FM has to say.
Jee.
Absolutely. And on to the next story. Iran and the United States are set to resume their nuclear talks in Geneva on the 26th of this month as tensions between the two countries continue to escalate with Tehran's nuclear program. And on to crude now. The global crude oil prices rose marginally today. The Brent crude was trading nearly 0.2% up at $71.89 per barrel. And the WTI crude was also trading about 0.2% up at $66.59 per barrel when reports last came in. Shishirji, with the war clouds mongering over over the region, Iran and nearabouts, and we have been hearing over the past 20 days or so that the US is kind of marshalling the troops and all in the region of Iran. Now, obviously, the crude has to get affected with this. Now, it rose marginally. Of course, 0.2% is not much, but still, how do you see crude behaving in the coming days?
See, the first story which you just read about the 26th of February meeting, and that meeting will also decide that what will be the direction of crude oil prices in the coming 15 days or say month or so. But as of now, it seems that the crude prices will go up, but not like 1% or 2%, maybe 0.2, 0.3 or 0.5% at the best.
Okay. And now moving on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading almost 1.7% up at 1,60,070 rupees per 10 grams, while silver was trading 5% higher at 2,65,930 rupees per kilogram a short while ago.
Multi commodity exchange mein taza samachar milne tak April anubandh wale sone ki keemat 1.8% badhkar 1,59,786 rupees prati 10 gram par chal rahi thi. Wahi March anubandh wali chandi 4.8% badhkar 2,65,086 rupees prati kilogram par thi. Shishir, karyakram mein aane aur shrotaon ke jawab dene ke liye aapka bahut bahut dhanyawad.
Dhanyawad.
Thank you so very much, Shishir ji. And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices end with gains. Sensex climbed nearly 500 points. Nifty closes above 25,700 levels. Global crude oil prices remain steady. And in the Indian bullion market, gold and silver prices rise. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।